आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में पेश करेंगी वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट। मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी बजट की प्रति। राज्य स्तरीय उद्योग संगठनों और प्रमुख उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की महत्वपूर्ण बैठक। कहा, प्रदेश में निवेश करने वाले हर उद्यमी के साथ खड़ी है सरकार। एटा जिले के पटना पक्षी विहार को मिला प्रदेश के 11वें वेटलैंड का दर्जा। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने कहा, एक जिला एक वेटलैंड योजना पर काम कर रही है सरकार। और प्रयागराज माघ मेले का 5वां प्रमुख स्नान पर्व आज। माघी पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। संसद में बजट भाषण संपन्न होने के बाद बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट होगा। एक रिपोर्ट।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बजट भाषण में अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास की रूपरेखा के साथ साथ सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगी। बजट तैयार करते समय केंद्र सरकार द्वारा युवाओं समेत आम नागरिकों से अलग अलग माध्यमों के जरिए सुझाव मांगे गए थे, जिसकी झलक केंद्रीय बजट 2026-27 में देखने को मिलेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि आज पेश होने वाला बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेगा।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से लगातार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है, किसानों को, नौजवानों को, छात्रों को, महिलाओं को, हर सेक्टर को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और बजट में आपको परिलक्षित दिखेगा विकसित भारत का संकल्प पूरे करने की आधारशिला आगे बढ़ाने का काम, मैं कह सकता हूँ ये आगामी बजट है।
आर्थिक जगत के विशेषज्ञों का भी मानना है कि बजट देश के विकास की गति को नए आयाम देने वाला होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर यशवीर त्यागी ने कहा है कि बजट सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर पेश होने की उम्मीद है।
ये बजट ऐसे समय आ रहा है जब विश्व में उथल पुथल है और अनिश्चितता का वातावरण है, और भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक उदाहरण पेश किया है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने में समर्थ। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि जो वैश्विक परिवर्तन हो रहे हैं, मुझे ऐसा आभास होता है कि बजट ये प्रयास करेगा कि हमारे जो विभिन्न क्षेत्र है, कृषि है, उद्योग है, छोटे उद्योगपति है, महिलाएं हैं, किसान है, इन सबके हितों को संरक्षित किया जा सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में किया गया निवेश सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि राष्ट्रहित में किया गया निवेश है। मुख्यमंत्री कल देर शाम लखनऊ में राज्य स्तरीय उद्योग संगठनों और प्रमुख उद्यमियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में निवेश करने वाला हर उद्यमी सरकार को अपने साथ खड़ा पाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खुशहाली, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में उद्योग जगत सबसे बड़ा सहयोगी है। सरकार इस साझेदारी को और मजबूत करना चाहती है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत कल विशेष अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में प्रदेश भर के मतदाताओं की सुविधा के लिए समस्त पोलिंग बूथों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि मतदाता सूचियों को शुद्ध करने के साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि जिनका नाम आलेख्य मतदाता सूची में नहीं है, वे घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 भरकर अपने BLO को उपलब्ध करा दें या पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्र ने बताया है कि 30 अप्रैल तक राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों तक मंदिर की देखरेख के लिए निर्माण एजेंसियों की एक छोटी यूनिट मंदिर परिसर में तैनात रहेगी। श्री मिश्र ने बताया कि मंदिर निर्माण पर अब तक करीब 1,900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं के लिए चलाई जा रही विद्युत बिल राहत योजना के दूसरे चरण को बढ़ाकर 5 फरवरी तक कर दिया है। ये योजना कल समाप्त हो रही थी। विद्युत बिल राहत योजना में अब तक 42 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिससे लगभग 4,500 करोड़ रुपए का राजस्व जमा हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने एटा जिले में स्थित पटना पक्षी विहार को प्रदेश का 11वां वेटलैंड घोषित किया है। देशभर में वेटलैंड की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। पटना पक्षी विहार के साथ ही गुजरात के छाड़ी ढांड को भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रदेश के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने बताया है कि सरकार एक जिला एक वेटलैंड योजना पर काम कर रही है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम सभा में वेटलैंड कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कल विश्व वेटलैंड दिवस पर बेतवा नदी के तट पर स्थित महावीर स्वामी पक्षी विहार में नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है रेल मंत्रालय से संबंधित परियोजनाओं पर एक रिपोर्ट।
इस समय देश में रेलवे की 387 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, जिन पर 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। इनमें से 97 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के माध्यम से की है। इन परियोजनाओं में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पहाड़ी और कठिन इलाकों में रेल नेटवर्क का विस्तार और बड़े स्टेशनों का विकास शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी रेल प्रणालियों में शामिल भारतीय रेलवे देश को जोड़ने, व्यापार को बढ़ावा देने और दूर दराज इलाकों तक संपर्क पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रयागराज माघ मेले के 5वें प्रमुख स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर आज ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही एक माह का कल्पवास आज पूरा हो जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
संपूर्ण मेला क्षेत्र में लगभग 3.5 किलोमीटर से अधिक लंबाई में बने स्नान घाट पर डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ ही जल पुलिस और गोताखोरों की तैनाती की गई है। माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद कल्पवासी अपना कल्पवास पूर्ण कर अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। इसको लेकर पुलिस के द्वारा यातायात के विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, माघ मेला क्षेत्र, प्रयागराज।
माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज महान समाज सुधारक और दार्शनिक संत रविदास की जयंती मनाई जा रही है। वाराणसी जिले के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर में आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए वहां व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने संत रविदास को नमन करते हुए कहा कि सद्गुरु रविदास जी ने कर्म से सेवा, समरसता और समानता का जो संदेश दिया वो आज भी हमें प्रेरित करता है। आज जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का जो संकल्प है उसकी आत्मा गुरु रविदास जी की शिक्षाओं में है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में आज घना कोहरा छाया है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश और शीत दिवस का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में पेश करेंगी वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट। मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी बजट की प्रति। राज्य स्तरीय उद्योग संगठनों और प्रमुख उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की महत्वपूर्ण बैठक। कहा, प्रदेश में निवेश करने वाले हर उद्यमी के साथ खड़ी है सरकार। एटा जिले के पटना पक्षी विहार को मिला प्रदेश के 11वें वेटलैंड का दर्जा। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने कहा, एक जिला एक वेटलैंड योजना पर काम कर रही है सरकार। और प्रयागराज माघ मेले का 5वां प्रमुख स्नान पर्व आज। माघी पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।